बेहद का वैराग होता है घर गृहस्थ में रहे। तथाकथित बेशक जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स घर गृहस्थ में है या हद के वैराग में है? उनका हद का वैराग है। और जो एडवांस पार्टी है वो घर गृहस्थ में रहने वाली है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी बुद्धि योग से उपराम रहे, ये है बेहद का वैराग। बुद्धि लिम्पाय मान न हो। सन्यासी क्या करते हैं? तन से वैरागी हो जाते हैं, तन के संबंधियों से वैरागी हो जाते हैं और मन में वही बातें याद आती रहती है, तो हद का वैराग हुआ। हमारा है बेहद का वैराग।
और बाबा 108 का जो माला है, ये जो अष्टदेव है 108 के अंदर में है या वो अलग है?
आठ की माला अलग और पहले बनती है, उसके बाद 100 तैयार होते हैं। इसलिए बोला है 100 की माला तो फिर भी बन जाती है, लेकिन 8 की माला में अदली बदली ऊपर नीचे बहुत होते हैं। ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि 8 तो सबके पूर्वज हैं। जैसे बाप सारे विश्व का पूर्वज है, पूर्व माने पहले जमाने जन्म लेने वाला, ऐसे ही जो और धर्म की आत्माएं हैं, ग्रुप हैं, उन सब के पूर्वज हैं जो 8 हैं। वो 8 100 में भी ऐड होते हैं। 800 में ऐड होते हैं तो 108 की माला कही जाती है। फिर वो 108 16,000 में भी ऐड होते हैं तो 16,108 की माला कही जाती है। फिर वो 16,108 900,000 में भी ऐड होते हैं तो कंप्लीट प्रजा की संख्या कितनी कही जाती है? 9,16,108। वो 8 हर जगह ऐड होते जाते हैं। जैसे कि उनको ऐड किए बगैर दुनिया बन ही नहीं सकती।
और बाबा रुंडमाला और मूलमाला इसका अभ्यास करें।
रुंड कहते हैं नीचे के हिस्से को और मुंड कहते हैं इसको। मुंड इसलिए कहा जाता है कि रुद्रमाला के जो मणके हैं उनमें ढेर की ढेर आत्माएं प्रवेश करती हैं। इसलिए जो यादगार रुद्राक्ष का मणका है उसमें मुख दिखाए जाते हैं ऐसे। ये मुख लेने की यादगार हैं। कभी तो बाप ने या बाप दादा ने उनका मुख लिया है सात्विक सेवा कराने के लिए, परंतु जब श्रीमत के विपरीत चल पड़ते हैं मन मत पर या मनुष्यों की मत पर तो भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करने लग पड़ती। ब्रह्मा की गोद में पलने वाले विधर्मी रहे हैं, ज्यादा संख्या में, या स्वधर्मी रहे हैं शास्त्रों में भी दिखाते हैं, ब्रह्मा ने मोस्टली किसको वरदान दिए? असुरों को वरदान दिए। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, घर परिवार में माँ का जो छोटा बच्चा होता है कितना ही खोटा हो, लेकिन माँ उसको भी बहुत बहुत प्यार देती है। तो वो दूसरे दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं, वो सारी की सारी चौरासी घंटे वाली देवी गाई हुई है। सात विधर्मी नारायण हैं क्या? टोटल नारायणों की संख्या कितनी है? नौ। भूल जाते अपने, कोई भूल लिया, भूल गए क्या? नौ नारायण है, एक संगम युगी और आठ सतयुगी। उनमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो से सनातन धर्म बनता है, दो के मेल से। उनको अलग कर दें तो कितने नारायण बचे? सात नारायण बचे, जो कम कलाओं वाले हैं, कम जन्म लेने वाले हैं, षष्ठी रूपी रंगमंच पर बाद में उतरने वाले हैं। तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं या अधूरा पार्ट बजाने वाले हैं? अधूरा पार्ट बजाते हैं। नंबर वार कम अनुभवी बनते हैं इस दुनिया के, या हीरो पार्टधारी के मुकाबले बराबर अनुभवी बनते हैं? जब कम पार्ट बजावेंगे तो अनुभवी भी कम बनेंगे। इसलिए वो कमजोर आत्माएं जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैतवादी युग में पहुंच करके और धर्मों के प्रभाव में आ जाती है। वो इब्राहिम के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो नारायण भी कम कला के और उनकी सारी प्रजा भी। तो वो कमजोर आत्माएं ब्रह्मा की गोदी में पली हैं। यज्ञ के आदि से लेकर के और 69-18 जनवरी तक अभी भी पल रही है, क्योंकि ब्रह्मा की ही बुद्धि में अभी तक नहीं बैठा है गीता का भगवान कौन है। तो एक ज भूल के कारण सारा सत्यानाश होता रहता है और दुनिया में असत्य का बोलवाला होता रहता है। वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माएं प्रैक्टिकल जीवन का फॉलो नहीं करती है ब्रह्मा को, उनके डायरेक्शन को फॉलो करती है। शिव के डायरेक्शन को नहीं पकड़ती, किसके डायरेक्शन को पकड़ती है? देहधारियों के डायरेक्शन को, ब्रह्मा के डायरेक्शन को पकड़ेंगी, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के डायरेक्शन को पकड़ेंगी। मुखवंशावली कहे जाएंगे या मुखवंशावली कहे जाएंगे? कोख माने गोद से उनको प्यार है, लेकिन मुख से निकली हुई जो भगवान शिव की बातें हैं उनसे उनको प्यार नहीं है। तो ऐसी सब आत्माएं, चाहे वो नारायण ही क्यों न हो अधूरे कला वाले, और उनकी प्रजा वर्ग की आत्माएं ही क्यों न हो, वो सब कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्माएं यहां संगम युग में भी जीते जी प्रारब्ध नहीं पाती। जब तक उनका जीवन रहता है तब तक प्राप्ति नहीं कर पाती। जैसे ब्रह्मा ने प्राप्ति नहीं की जीवन रहते, क्या जीवन मुक्ति पाई? जीवन रहते रहते मुक्ति नहीं पाई। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं या ब्रह्मा से जो प्यार लेने वाले हैं वो भी अधूरे ब्राह्मण शरीर छोड़ने वाले भूत प्रेत बनते हैं। सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, स्थूल शरीर छूट जाता है और वो उन रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करते हैं जो रुद्रमाला के मणके श्रीमत को न पकड़ करके मनमत अथवा मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं। कहीं कोई पार्टी बन गई, कहीं कोई पार्टी बन गई, कहीं कोई श्री श्री 1008 बन गए, कहीं कोई श्री श्री 108 बन गए, माला बनाना शुरू कर दिया। तो ढेर के ढेर फॉलोअर हो गए ना, ग्रुप अलग अलग हो गए। ऐसी भूत प्रेत आत्माएं फिर उनमें प्रवेश करती हैं, तो अनेक मुख हो जाते हैं। इसलिए कहावत है, कहते हैं और प्रैक्टिकल भी है कि रुद्रमाला के जो मणके रुद्राक्ष दिखाए जाते हैं भक्ति मार्ग में, उनमें एक मुख वाला मणका बहुत कम मिलता है और अनेक मुखों वाले मणके ढेर के ढेर मिलते हैं। तो जब विनाश होगा उस समय दुनिया की ढेर आत्माएं अचानक शरीर छोड़ेंगी, भूकंप आते रहेंगे और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिरती रहेंगी, कितने अचानक मरेंगे। और जिनका जिनका अचानक मौत होता है वो सब प्रवेश करते रहेंगे। यहां तक बताया है कि 33 करोड़ देवताएं हैं, देवात्माएं, और उनमें से एक एक में सोल प्रवेश करती रहती है। ऊपर से परमधाम से जो भी आत्माएं आएंगी वो गर्भ से तो जन्म नहीं लेंगी, पवित्र आत्माएं तो क्या करती है, कोई में प्रवेश कर जाती है। अब 33 करोड़ कम 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं ऊपर से उतरती रहती है और जिनमें प्रवेश करती है वो देव आत्माएं 33 करोड़। तो 33 करोड़ को भाग दो 500-700 करोड़ में, एक एक में कितने आए, तो ढेर के ढेर प्रवेश करते हैं। अभी भी ये शूटिंग होगी और होने वाली है और हो रही है। ब्रह्मा से ज्यादा श्रेष्ठ आत्मा तो और कोई है भी नहीं, और वही जब प्रवेश कर रही है तो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जितने भी विधर्मी आत्माएं हैं वो सब प्रवेश करती हैं और मुख से अल्लम गल्ला बोलती हैं, कुछ भी बोल के सुनाएंगी और जो सुनाएंगी सो श्रीमत के बखिलाफ। तो मुख बने हुए रुद्राक्ष के मणकों में, कहते ना ये तो एक मुख की भाषा बोलता है, माने एक ही बात बोलता है। और कार्तिकेय को कितने मुख दिखाए हैं, 6 मुख दिखाए, माने वो अपने जीवन काल में ब्राह्मण तो बनता है लेकिन जो 6 विधर्मी मुख हैं, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन मुस्लिम सन्यासी सिख इन सब में चक्कर काटता रहता है और सबकी बातों को सत्य बताता है। तो छह मुख दिखाई दे, मुख दिखाने का भी कोई कारण होगा ना। एक मुख की बात करना चाहिए या रावण की तरह दस मुंह से बात करनी चाहिए? एक मुंह अच्छा या दुमुहा अच्छा? एक मुंह का होना चाहिए। और
बाबा जो 33 करोड़ देवता है ये तो सतयुग के लेकर कलयुग का तो जो आता है ये सब 33 को सुनता है। तो 33 जो अभी जो पाठ चला है साई बाबा का ये क्या देवत्व तो है?
बिल्कुल, जो महान महान आत्माएं कलयुग के अंत में भी उतरती हैं और सनातन धर्म की ही बातें करती हैं, दूसरी बातें तो नहीं करते। रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं, इन्होंने विदेशी सभ्यता को आगे बढ़ाया या स्वदेशी सभ्यता को आगे बढ़ाया? तो ये सब देवात्माएं भले कलयुग में आती हैं, इसलिए नई नई आत्माएं होने के कारण उनका नामाचार बड़े जोर से फैल जाता है।
ये 33 में काउंट होगा ना?
33 करोड़ में ये सब काउंट, ये नहीं इनके फॉलोअर्स भी।
अच्छा, ये सब उनका जो पुरुषार्थ अनुसार ये लोग क्या सतयुग के भी आएगा? वो लोग
सतयुग में क्यों आए? कलयुग में आए हैं या सतयुग में आए हैं?
ये ब्रह्मा का 33, शंकर का 33
है,
शंकर का 33।
अच्छा अच्छा, तीन मूर्तियों को 100 सालों में बांटा गया
33।
हाँ, तो 33-33 साल आता है।
ये ब्रह्मा का क्या आकार मृत्यु होता है? 33 का संपूर्ण भावना,
33
संपूर्ण भावना।
हाँ, 69 में 18 जनवरी को उनके 33 साल पूरे हो गए साकार शरीर से। तो वो 33 साल में उन्होंने जो कुछ किया वो प्रैक्टिकल जीवन में उनका पुरुषार्थ गाया गया। और
बाबा भगत का मनमोहन सिंह
है, ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तो दो दादियां मुखी थी मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद, एक मनमोहिनी दीदी और दूसरी प्रकाश मणि कुमार का दादी। लेकिन बाबा ज्यादा महत्व और मान मर्तबा किसको देते थे दिखावे में? क्योंकि मुरली में बोला है अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाबा की बड़ी भारी युक्ति है। तो अंदर से तो मनमोहिनी दीदी को प्यार करते थे और पहली अव्यक्त वाणी में प्यार की निशानी बता रहे हैं कि पहली अव्यक्त वाणी में मनमोहिनी दीदी को इंचार्ज बनाया गया सारी संस्था का। बोला गया कि ये सब सेंटरों पर चक्कर लगाती रहेगी, देखभाल करती रहेगी और हेड ऑफिस में ईशु बहन तो है ही देखभाल करने के लिए, कुमारका उसकी सहयोगी बनेगी। तो असिस्टेंट क्लर्क हुई या मुखिया हुई? असिस्टेंट क्लर्क की जगह पर रखा, लेकिन ये बात किसी ने ध्यान ही नहीं दी। और मनमोहन दीदी सीधे साधे स्वभाव की थी, कुमार का दादी आपाधापी करने वाली। संगम युग में सेवाधारी बनकर रहना अच्छा है या प्रशासक बन के रहना अच्छा है, लेकिन कौन सा टाइटल ले लिया? मुख्य प्रशासिका। और मनमोहन दीदी तो पहले ही जरी छोड़ दिया। एक है इस्लाम धर्म की सरपरस्त, जो ईश्वर को, ईश्वर बाप को पहचानने में ब्राह्मण परिवार के सामने दीवाल का काम करती है, दीवाल बनकर के खड़ी हो जाती है, न खुद बाप को पहचानती न दूसरों को पहचानने देती है। इसलिए मुसलमानों में जो उनका पूजा का स्थल होता है मंदिर, उसका नाम क्या है? मिस जिद पकड़ ली कि मैं इस स्वरूप को भगवान बाप नहीं मानूंगी। तो मुसलमानों का जो पूजा का स्थल है उसमें एक दीवार खड़ी कर देते हैं सामने, क्या चाहे ईदगाह हो और चाहे मस्जिद हो, वो दीवार की ही पूजा करते हैं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में अभी शूटिंग हो रही, होती रही, उस दीवार को ही उसके फॉलोअर्स मानते हैं। भगवान बाप का जहां परिचय दिया जा रहा हो वहां कोई की बात नहीं सुनो, कान में उंगली दे लो, अल्लाह मियां को याद करो। ये शूटिंग कहां होती है? मुसलमान ही तो कान में उंगली देते हैं नमाज पढ़ते समय, किसी के नहीं सुनना चाहते, निराकार को याद करते हैं। साकार को मानना ही नहीं है।
बाबा जो रुष्कुल नदी है ना,
एक मिनट, हाँ,
इसका अर्थ है क्या?
है
जो रुष्कुल नदी है ना,
ऋषि कुल्या,
इसका अर्थ है क्या?
जो ऋषि के कुल से आती है, ऋषि माना
पवित्र,
और कुल से आ, किसके कुल से आई? पवित्र के कुल से आई, उसका नाम ऋषि कुल्या पड़ गया। कोई ब्रह्मकुमारी होगी ना ऐसी है कि जन्म जात पवित्र रही होगी? जैसे गुलजार दादी है, गृहस्थ जीवन में पली है बचपन से, या आश्रम के वातावरण में बचपन से पलती रही, तो जन्मजात पवित्र हुई ना। ऐसे ही कोई एडवांस पार्टी में भी है कि छोटेपन से ही आश्रम जीवन बिताना शुरू कर दिया और पवित्र बन करती रही, तो नाम पड़ गया ऋषि कुल्या। और
साउथ पार माउथ पार तो दो पार होना,
साउथ पोल,
साउथ पोल
हाँ, और नॉर्थ पोल हाँ।
चौतन कौन कौन
है?
चौतन
चैतन्य में एक होता है आकर्षण करने वाला, और एक होता है सारा आकर्षण खींच लेने वाला, उसको साइंटिस्ट लोग कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक पार्ट है भरपूर करने वाला प्लस, और एक पार्ट है माइनस। जैसे मनुष्य सृष्टि में भी दो ही पार्ट मुख्य हैं, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों में से प्लस किसको कहेंगे माइनस किसको कहेंगे? जब भगवान बाप मौजूद है तो माइनस को भी प्लस बनाई देता है, और जब भगवान बाप मौजूद नहीं है तो स्त्री जाति माइनस रह जाती है या प्लस रह जाती है? माइनस रह जाती है। अभी इस दुनिया में पुरुषों का बोलबाला है या कन्या माताओं का बोलबाला है? पुरुषों का बोलबाला। ऐसे ही जो बेहद की दुनिया का जब निर्माण होता है तो जो पार्टधारी है वो भी दो प्रकार के हैं, मुख्य मुखिया। एक है निगेटिविटी बढ़ाने वाला और एक है पॉजिटिव भाव को बढ़ाने वाला। बाप आते हैं तो पॉजिटिव बढ़ाते हैं या निगेटिव बढ़ाते हैं? पॉजिटिव बढ़ाते हैं। और किस तन में आते हैं? हैं? पुरुष तन में आते हैं, स्त्री चोले में आते हैं? पुरुष तन में आते हैं। तो वो है नॉर्थ पोल, चुंबकीय शक्ति, आकर्षण शक्ति पवित्र में होगी या अपवित्र में होगी? खींचने की शक्ति, जिसको भक्ति मार्ग में नाम दे दिया है कृष्ण, कृष्ण माने कशिश करने वाला, आकृष्ट करने वाला है, तो वो हो गया नॉर्थ पोल। जरूर नीचे कोई चुंबक का पहाड़ है। पुरुष के अपोजिशन में है साउथ पोल,
बाबा है। जो गीजर कहते है ना, उसका देह से ब्रह्मा बाबा आते
है,
गुलजर कहते देह से ब्रह्मा बाबा आते है, जो गुलजर कहती हलचल होगा, गुलजर कहती हलचल होगा,
अचल
हलचल
दादी में हिल जाती है।
तो ब्रह्मा शिव बाबा राम बल दे, ब्रह्मा बाबा आते तो राम बल कुछ नहीं
होगा। कहने का मतलब ये है कि जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा के तन में कोई हलचल नहीं होती थी, क्या कोई झटका नहीं लगता था। और मनुष्य आत्मा जब कोई में प्रवेश करती है तो झटका लगता है। अकेले ब्रह्मा की बात नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा की बात नहीं है, जो भी मनुष्य मात्र है और वो अचानक शरीर छोड़ देते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं, तो उनको अपना सूक्ष्म शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है। जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। जैसे अभी बोला कि वाचा की सेवा बहुत कर ली, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा बहुत कर ली, अभी कौन सी सेवा करो? मनसा सेवा। ज्यादा ताकत किसमें है? मनसा सेवा में ज्यादा ताकत है, वाइब्रेशन बनाने की ताकत है। तो ऐसे ही ब्रह्मा वाली सोल मनुष्य आत्मा होने के कारण जब प्रवेश करती है तो जिसमें प्रवेश करती है उसको हिलाई देती है। सिर्फ हिलाई नहीं देती है, वो आत्मा जैसे सुसुप्त अवस्था में चली जाती है, अपने भान को भूल जाती है, विस्मृति स्वरूप बनाई देती है, तो विस्मृति स्वरूप बनाना अच्छा या स्मृति स्वरूप बनाना अच्छा है? बाप क्या करते हैं? बाप आते हैं तो स्मृति स्वरूप बनाने के लिए आते हैं और बनाते भी हैं। अब ब्रह्मा क्या करते हैं? विस्मृति स्वरूप बना देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मनुष्य आत्माओं में देह अभिमान होता है और भगवान में देह अभिमान नहीं, नहीं होता। कोई कहे क्या प्रूफ, हम नहीं मानते। तो प्रूफ बताओ कि ब्रह्मा की सोल जब आती है तो मान मर्तबा लेकर के आती है। बुलाओगे तो आएंगे, नहीं बुलाओगे तो ब्रह्मा बाबा को आवाहन किया जाता है ना, पहले से निमंत्रण देकर के रखा जाता है ना, बुलाया जाता है ना, तो वो बुलाने से आते हैं। और शिव बाबा बिना बुलाए ही आ जाते। ब्रह्मा के तन में आते थे तो भी बिना बुलाए आते थे, बुलाने की जरूरत नहीं। 63 जन्म भी भले बुलाने वाले बुलाते रहे लेकिन वो आए नहीं, उन्हें जब आना है तब आएंगे। अभी भी जहां कहीं शिव बाबा का पाठ चल रहा होगा वो बुलाने से आता है, फिर अपने आप कूद पड़ता है, अपने आप आ जाता है, कोई निमंत्रण देने की दरकार नहीं है। तो शिव उसको अपना देह नहीं है, देह भान नहीं है, वो निराकारी है, निरहंकारी है, निर्विकारी है। तो जिस तन में भी बाप बन करके आता है उसकी भी ऐसी स्टेज बनती है। कैसी? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। शिव जहां प्रवेश करेगा पता ही नहीं लगेगा कि मेरे में प्रवेश किया, दृष्टि की पावर जिज्ञासु को दे गया, वाचा की पावर जिज्ञासु को दे गया। बाद में पता चलता है, अरे मेरे में तो इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं इतने बड़े आदमी को, इतने बड़े व्यक्ति को मैं सुना पाता कुछ भी। जरूर कोई शक्ति ने ये कार्य किया। तो शिव वो देहभान रहित आत्मा सदा शिव है। क्या सदा शिव का मतलब क्या? सदैव कल्याणकारी है। भले इसे नीचे सृष्टि में नीचे आता है, नीचे से नीचे में आता है, पति तमो प्रधान में आता है, बड़े से बड़े कामी कांटे में आता है, फिर भी उसकी इंद्रियों से जो कर्म करता है। अब किसी को थप्पड़ मार दिया तो उस समय तो भले लगे थप्पड़ मार दिया, लेकिन रिजल्ट कल्याणकारी होगा। कोई भी कर्म इंद्रियों से कोई भी कार्य करेगा उसका रिजल्ट कल्याणकारी ही होगा, अकल्याणकारी नहीं हो सकता। मनसा से जो भी संकल्प चलाएगा उसका कल्याण ही कल्याण फैलेगा वाइब्रेशन में, अकल्याण नहीं फैल सकता। दृष्टि से सृष्टि सुधारने का ही काम करेगा, दृष्टि से सृष्टि विकृत नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं बड़ी बुरी नजर है, ट्रकों के पीछे क्या लिखा रहता है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसका मतलब मनुष्यों की तो बुरी दृष्टि ही होती है। स्त्री पुरुष सामने रहेंगे एकांत में तो विकार के भाव ही आएंगे, विकारी दृष्टि ही जावेगी। और शिव बाबा की, शिव बाबा की विकारी दृष्टि नहीं हो सकती, वो तो सदैव ही निराकारी है, निर्विकारी है। और
गंजम में महाकाली पूजा होती है,
गंजम में
बाहर में क्या नहीं,
क्यों नहीं जाता है,
क्यों कलकत्ते में नहीं होती और दूसरी जगह नहीं होती है? हाँ, ये बात जरूर है कि नाम रखा है गंजम, तो वास्तव में गंजम नाम नहीं है, गंदम नाम है। वो गंदम बिगड़ करके क्या हो गया, गंजम। जैसे बाबा आता है तो पतितों के बीच में आता है, बंदरों के बीच में आता है, सबसे ज्यादा कामी जानवर कौन सा होता है, बंदर होता है। ऊंची चोटी पर जाकर के सबके सामने विकार भोगेगा, इतना विकारी होता है, उसे लाज भी नहीं। कामांध कहा जाता है ना, तो मनुष्य भी काम विकार में अंधे हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि संसार में इसका क्या असर होगा, बुद्धि में ही नहीं आता। अंधे, कामांध, क्रोधांध, लोभांध कहा जाता है। तो बाबा जब आता है तो ऐसे स्थान को अपना मुख्य स्थल बनाता है जिसका नाम पड़ता है माउंट आबू, बू माने बदबू, आ माने सारी दुनिया की बदबू जहां आके इकट्ठी होती है। और सिर्फ बदबू ही नहीं, छोटा मोटा ढेर इकट्ठा नहीं होता, पहाड़, माउंट, बदबू का पहाड़ जहां जाकर के इकट्ठा हो जाता है। संसार में जब प्रत्यक्षता होगी तो प्रत्यक्षता से पहले बदबू का पहाड़ लोगों को देखने में आएगा, दुनिया वालों को, या भगवान देखने में आएगा? क्या देखने और सुनने में आएगा? कलंकी धर है, क्या देखेगी दुनिया, जिसके ऊपर ढेर के ढेर कलंक लगते हैं। तो नाम पड़ गया माउंट आबू, बदबू का पहाड़। जो भारत के राजाएं हैं वो जन्म जन्मांतर के पतित राजाएं बने, एक एक राजा के रनिवास में सैकड़ों सैकड़ों रानियां रहती थी, तो कितने पतित होते होंगे। ऐसे पतित राजाओं वाली आत्माएं माउंट आबू में आकर के इकट्ठी होती है, और उसको तपस्या भूमि कहा जाता है, वहां आकर के तपस्या करती है देवभानु को त्यागने के लिए। ये देवान उन्होंने 63 जन्मों में धारण किया है, और एक जन्म में भगवान की याद से उस देवान को उतारती है, तो उस स्थान का नाम पड़ता है माउंट आबू। और माउंट आबू में जो आत्मा है बीज रूप स्टेज धारण करने वाली है, वो बीज रूप स्टेज धारण करने वाली आत्माओं को माउंट आबू से ज्ञान मिलता है या कोई दूसरे स्थान से ज्ञान मिलता है? वो स्थान भक्ति मार्ग में गाया हुआ है, बनारस। क्या नाम दिया? बना बनाया रस जहां ज्ञान का मिलता है। कोई को मनन चिंतन मंथन विशेष नहीं करना पड़ता, सब बना बनाया मिल जाए। और जहां से ये मिलता है वहां की सारी लाइनें और रोड पर जितने भी शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, उन सबका नाम गंदुम 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 गंदुम। काश गंधम ड्रवारे गंधम दरियाओ गंधम दरियाओ माने समंदर गुरसाय गंधम कायम गंधम अहमद गंधम खुदा गंधम सारी गंध ही गंध ही गंध
इसलिए गंगा में गंधम में गंगा में है
किसे गंगा के किनारे किनारे के सारे स्थान है
गंधम क्या है वो गंधम के आएगा क्या
अब गंधम जहाँ होगा तो गंगा से कनेक्शन होना चाहिए ना पतित पावनी कौन है नदी तो एक ही पतित पावनी गई हुई तो घबराना नहीं चाहिए क्या कि भगवान ने हमको गंजम में क्यों पैदा कर दिया अरे आखिरी जन्म तो जितना खराब से खराब हो गया तो अच्छा लेकिन अभी खराब नहीं बनना उल्टा नहीं कर लेना क्या अभी बनाने का टाइम है या गिरने का टाइम है अभी बनाने का टाइम है अभी पतित बनने का टाइम नहीं है
ज्ञान का सागर आया गंजम क्या गंधी संपन्न आया
तो गंधम में महाकाली अपना डांस नहीं करेगी तो कहाँ करेगी है
बाबा याद में बैठे हैं ना आदमी के लोह आता है
क्या आता है
याद में बैठे
आंसू आते हैं ना आंसू आ जाते हैं प्यार के भी आंसू होते हैं
बाबा नर्मदा नदी का अर्थ क्या
है नर और मादा शिखंडी का नाम सुना है शिखंडी का नाम नहीं सुना महाभारत में एक शिखंडी पात्र भी है कभी स्त्री का पार्ट बजाता कभी पुरुष का पार्ट बजाता नर का भी पार्ट बजाता और मादा का भी पार्ट बजाता रुद्रमाला में जो भी कन्या माताओं के चोले हैं भले चोले तो स्त्रियों के हैं कन्या माताओं के हैं लेकिन आधीन रहने वाले संस्कार हैं उनमें नहीं आधीन रहने के संस्कार नहीं है तो जब तक पुरुषार्थी जीवन है स्त्री चोला दिखाई तो पड़ता है लेकिन अंदर से स्त्री स्वभाव नहीं है जब परिपक्व पुरुषार्थ बन जाएगा तो उनका जन्म जन्मांतर का राजा का प्रभाव राजा का जो स्वभाव संस्कार है वो संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा और चोला भी परिवर्तन हो जाएगा आज भी ऐसे हो रहा है दुनिया में जो अज्ञानियों की दुनिया है उसमें बहुत से ऐसे हैं स्त्री पुरुष बनते जा रहे हैं और पुरुष स्त्री बन जाते हैं हार्मोन्स की बात है स्वभाव संस्कार के आधार पर मनुष्य के शरीर के स्वभाव संस्कार के आधार पर हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और जब हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं तो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं और बाबा भी यही आके करता है बाबा जादूगर है हैं दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को क्या बना दिया हैं स्त्री बना दिया नाम क्या रख दिया ब्रह्मा बड़ी अम्मा सिर्फ नाम ही रख दिया या चोला भी बना दिया बड़ी अम्मा का चोला भी बना देता है दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती लेकिन वही ब्रह्मा जब स्त्री चोला धारण कर लेता है तो पूजा होने लगती है तो स्त्री को पुरुष बनाए देता है और पुरुष को स्त्री बनाए देता है
पार्वती
को नहीं मुंडमाला दिखाते हैं उनका जो महाकाली स्वरूप है तम प्रधान रूप तब मुंडमाला दिखाते
हैं में एक बार पुरुष तो
है?
एक बार स्त्री चोला धारण करता है
हाँ वहाँ ऐसे नहीं होता कि दो दो बार स्त्री का दो दो बार पुरुष का जन्म हो नहीं वहाँ क्रम से चलता है एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का विसंगति वहाँ नहीं होती कोई बात में विसंगति नहीं होती और द्वापर युग में कलयुग में हर बात में विसंगति, विपरीत गुण, विपरीत आचरण, गुण धर्म स्वभाव सब विपरीत होने लग पड़ते हैं, बैलेंस ही हर बात का बिगड़ जाता है। हिंदी जानने वाली बहन बोलो क्या बोलो माता क्या बोल रही है
वो जो शंकर के शंकर को ये छाती पर जो काली पांव रखते है ना वही बोल रही है।
हाँ तो क्या पूछ रहे हैं
क्यों सो रही है
उसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ब्रह्मा का काम स्थापना, विष्णु का काम पालन और शंकर का काम विनाश। शंकर का काम तो विनाश है लेकिन कोई चाहता है कि हमारे घर का विनाश हो जाए, हमारे तन का विनाश हो जाए, हमारे बाल बच्चों का विनाश हो जाए, हमारी दुनिया उजड़ जाए, कोई चाहता है? है नहीं चाहता। तो विनाश अच्छी बात लगती है लोगों को, हर तेरा विनाश हो जाए या गाली लगती है, गाली लगती है। और शंकर के तन में कौन आता है? शिव। उसका अर्थ क्या है? कल्याणकारी। अगर शंकर के तन में शिव ना आवे तो शंकर कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो शिव कल्याणकारी उसमें प्रवेश करता है और शिव कल्याणकारी प्रवेश भी करे और शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा भी जाए, और किसी देवता का नहीं जोड़ा जाता, 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता, इतना होते हुए भी उसके मत्थे लग जाए हाय इसने विनाश कराई दिया तो ये तो खराब बात हो गई। इसलिए शिव बाबा विनाश नहीं कराते हैं, शक्तियों से करवाते हैं। विनाश के लिए निमित्त कौन बनती है? शक्तियां। शिव बाबा प्लस है या माइनस है? प्लस है। वो तो बनाने का ही काम करेगा, बिगाड़ने का काम नहीं करता है। तो जो कन्याएं माताएं हैं उन कन्याओं माताओं में से ऐसी शक्तियां निकलती हैं, ऐसी पावर वाली जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिनकी बुद्धि में शिव बाबा याद है, इसलिए महाकाली के जो पुराने पुराने चित्र हैं, शंकर की छाती पर जब पांव रखा हुआ है तो उनके मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है, माने उनको शिव बाबा की याद है। शिव बाबा की याद में रह करके वो सारा कार्य, विनाश का, संहार का, असुर संहारिणी का सारी पार्ट बजाती है। इसलिए शंकर को अगर वो काम न करना पड़े और दोष भी मत्थे न मरा जाए तो अच्छी बात है ना? है आराम से पड़ जाना चाहिए या हुड़दंग मचाना चाहिए? आराम से पड़े रहो, भले छाती पर पांव रख दिया। शिव बाबा मान मर्तबा चाहता है क्या? है छाती पर पांव रख देने से क्या होता है? दिल के अंदर कौन बसा हुआ है वो निकाल दो तो दिल के अंदर की बात शिव बाबा देखता है या ऊपर का पांव देखता है? दिल के अंदर की बात देखता है। दिलवाड़ा बाप है या स्थूल पांव वाला है? वो तो दिलवाड़ा है ना। इसलिए जो चित्र बनाया है अच्छा ही बनाया है, एक्यूरेट बनाया है। और
बाबा दिलवाड़ा मंदिर से नग्न मूर्ति क्यों रख दिया?
जैन मंदिर,
जैन मंदिर,
जैन मंदिर में नग्न मूर्ति जो दिखाते हैं ना
वो
कितना है?
वो संपन्न स्टेज की यादगार है मूर्तियां या अधूरी स्टेज की यादगार है? संपन्न स्टेज जब हमारी बनेगी तो नंगी आत्मा महसूस होगी या देवान का कपड़ा हम पहने हुए होंगे, नंगी आत्मा हो जाएंगे तो उसको कैसे दिखाएं? इसलिए उनको कपड़े नहीं दिखाए हैं, शरीर रूपी वस्त्र दिखाए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको देह होती ही नहीं है, देह तो होती है लेकिन स्टेज निराकारी होती है, इसलिए नग्न मूर्तियां दिखाई गई। और
शंकर जी का तांडव लीला, इसका नाम
ताट माने क्या है?
तांडव लीला।
ताट माने क्या? ताड़ माने पिटाई, उसको कहते हैं ताड़। और नृत्य वो स्कूल डांस किया है या ज्ञान का डांस किया है? ज्ञान का डांस किया है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसा वर्ग अनुभव में आ रहा है कि उनको कोई भी ज्ञान का पॉइंट अच्छे से अच्छा सुनाओ एडवांस कर, उनको ऐसे लगता है कि हमको कोई पिटाई कर रहा है। तो तारना हो रही है कि नहीं हो रही? उनके लिए ज्ञान डांस अभी शुरू हो गया। नंगा नाच और आगे चल के और भयंकर होता जाएगा। और
हवा जब 2036 में कृष्ण जन्म लेगा तो उसको जन्म देने वाला भाग क्या जन्म देने के बाद शरीर छोड़ेंगे?
एकदम परिवर्तन होता है या परिवर्तन होने में टाइम लगता है? जो प्रकृति एकदम तामसी बन गई है 2036 में, एकदम तामसी बन जाएगी ना एटम बम फटने से, पृथ्वी हो चाहे जल हो चाहे वायु हो, ये तामसी तो बनेगी ना, तो तामसी से एकदम ठंडे हो जाएंगे या टाइम लगेगा ठंडा होने में? कुछ तो टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं संपन्न आत्माएं शक्ति पर उतरती जाती है, प्रकृति उनके लिए सतोपदान तेज धारण करती जाती है। एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होगा, एक दो जन्म में स्थिति सा ठीक हो जाएगी।
तो उसको जन्म लेने वाले बाप माँ जो है वो क्या हटा दी शरीर छोड़ देंगे या
बर्फ पे शरीर रहेंगे या शरीर खत्म हो जाएंगे? सुरक्षित रहेंगे। और
कृष्ण का शरीर क्या बर्फ में?
वो शरीर जो बर्फ में दबा हुआ है वो बाहर आएगा, तब उसमें से कृष्ण की सोल प्रवेश करेगी या बाद में पहले ही प्रवेश कर जाएगी? बाद में प्रवेश करें। वो चोला जो बर्फ में दबा हुआ है वो उठ करके बाहर तब आएगा जब उसमें से रचयिता जन्म देने वालों की सोल प्रवेश करे, तब उठ करके बाहर आएगा। और जब बाहर आ जाएगा तब राधा कृष्ण जैसी आत्माएं बच्चों की वो माँ बाप में प्रवेश करेंगे। और
जो बोला है कि एक पावन बनने से नहीं बनने से कोई पावन नहीं बनता,
एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं और एक के पतित बनने से सब, तो पहला पत्ता कौन है? कृष्ण की सोल पहला पत्ता है ना, बीज तो बाप है लेकिन बाप के अपने घर में आग लगी हुई हो और बच्चा जल रहा हो तो जो सच्चा बाप होगा वो बच्चे को छोड़ करके भाग जाएगा, खुद का कल्याण कर लेगा? नहीं करेगा। बाप का जन्म बच्चे के साथ है कि अकेला है? जो बाप का जन्म सो बच्चे का जन्म, जन्म माने प्रत्यक्षता। राम वाली आत्मा भी वो ही है, एक ही शरीर में, और उसी शरीर में पढ़ने वाली विशेष आत्मा कृष्ण की भी पढ़ाई पढ़ रही है, लेकिन प्रत्यक्षता दोनों की साथ ही साथ होगी। इसलिए एक आत्मा निमित्त बनी हुई है, कौन? कृष्ण की सोल।
वो जो 2018 में कृष्ण का प्रतिकथा हुआ, तो वो क्या एक ही शरीर में होगा या दूसरा कोई शरीर में होगा?
अभी एक ही शरीर है या दो शरीर है? अभी शरीर एक ही है, अंतर ये है कि वो ज्ञान चंद्रमा की आत्मा अधूरी है, पढ़ाई अधूरी है, और उस समय पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तब फिर वो शंकर रहा और न अधूरा चंद्रमा रहा, फिर तो नारायण हो जाएगा। कभी मुरली में शंकर को याद करने के लिए बोला नहीं बोला? शंकर माना ही अधूरा पुरुषार्थी, शंकर को याद में बैठे हुए दिखाए। तो जो याद करेगा वो अधूरा है या संपूर्ण है? है अधूरा है, तो भी तो याद कर रहा है।
सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना।
संपन्न स्टेज जब हो जाए, वो चंद्रमा भी अधूरा से संपन्न हो जाए, और जिसमें प्रवेश है वो भी संपन्न स्टेज को प्राप्त कर जाए, तब कहेंगे नारायण। फिर शिव की दरकार है क्या?
नहीं।
फिर शिव की दरकार नहीं, शिव का काम पूरा। शिव जो है वो आत्मा को सुधारने आया है या शरीरों को सुधारने आया है? शिव ज्ञान सुना करके आत्माओं का परिवर्तन करता है क्या? शिव आत्मा का परिवर्तन करता है ज्ञान के आधार पर, और आत्मा जब पवित्र बनती है तो प्रकृति के पांच तत्वों का परिवर्तन करती है वाइब्रेशन के आधार पर। ओम शांति।